Living. ऑनलाइन इंस्पिरेशनल लेक्चर सीरीज के संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुभ भावनाओं से भरा हो हृदय तो प्रस्फुटित होता भाग्योदय। इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभ प्रेरणाएं सुनते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि द्वारा। महेंद्र प्रताप मल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर IRCTC। रमेश चंद्र रत्न, चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज।
ब्रह्म कुमारी का परिवर्तन, यातायात एवं पर्यटन प्रभाग, तालाबंदी के दौरान शांत मन विषयक राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन 15 से 17 मई तक कर रहा है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और समयानुकूल है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में शिवानी दीदी, डॉक्टर गिरीश पटेल जैसे विख्यात व्यक्ति अपनी बात रखेंगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में आप पूरे सम्मेलन में एक एक वक्ता को ध्यान से सुनें और उन बातों को अपने जीवन में लाएं तो अवश्य आज के आपाधापी से भरे समय में हमारे मन को सुकून प्राप्त हो सकेगा, हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और हमारी कार्य क्षमताएं भी बढ़ेगी। मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि संभव हो तो गोष्ठी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्णित आत्मनिर्भर भारत विषय पर भी अवश्य प्रकाश डाला जाए। अंत में मैं आयोजकों को कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्थान के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल विंग द्वारा आयोजित गति सुरक्षा एवं आध्यात्मिक विषय पर ऑनलाइन सेमिनार ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि चाहे सड़क यात्रा हो या रेल यात्रा अथवा जीवन यात्रा, तीनों के लिए संयम, संतुलन, सुरक्षा अति आवश्यक है। हमारा मानव जीवन बहुमूल्य है। अपने जीवन की सुरक्षा व मन का संतुलन बनाए रखने के लिए मन स्वस्थ और शांत रहना आवश्यक है, जिसका मात्र विकल्प राजयोग है, क्योंकि आध्यात्मिकता ही जीवन के सुखी आनंदमयी बना सकती है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरे विश्व में लाखों लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रहा है तथा शांति भाईचारा का संदेश देने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। बहनों का त्याग और समर्पण की मिसाल अद्वितीय है, जो देश के लिए किए जा रहे निःशुल्क सेवा एवं योगदान की भूर भूर प्रशंसा के साथ दिल की गहराई से मैं अभिवादन आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इस सेमिनार में भाग लेकर के रेल अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। मैं स्वयं पिछले वर्ष आयोजित की गई इस सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित था, किंतु आज इस वैश्विक महामारी कोरोना COVID-19 के चलते आई आपदा को अवसर में बदलते हुए सेमिनार ऑनलाइन आयोजित करने वाले आयोजकों को सहृदय आभार प्रकट करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेकर के कोरोना जैसी महामारी को हराने में देश की एकजुटता प्रदान करने में विश्व प्रतीक बने हैं। हम भी इस संकट की घड़ी में संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान व सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए कोरोना को हराएं। मेरी शुभ भावनाएं एवं शुभकामनाओं सहित सधन्यवाद। ओम शांति।
राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास का तीसरा चरण, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि वर्तमान समय राजयोग के नियमित अभ्यास की आवश्यकता क्यों है, व्यस्त रहते भी स्वस्थ कैसे रहें। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन।
ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के सत्र में आज हम समझेंगे कि राजयोग मेडिटेशन किस तरह से किया जा सकता है और इसके अभ्यास से हमें क्या फायदे होंगे, क्यों वर्तमान समय पर इस अभ्यास की आवश्यकता है और राजयोग के निरंतर अभ्यास का हमारी लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब योग शब्द सुनते हैं तो ये आज की बात नहीं है, हम प्राचीन काल से योग शब्द का उच्चारण करते आ रहे हैं। हालांकि तन को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना, प्राणायाम करना, आसन आदि करना वो बहुत जरूरी है, लेकिन मन के स्वास्थ्य का क्या? आज हर व्यक्ति तन के स्वास्थ्य के प्रति अवेयर है, लेकिन मन को स्वस्थ रखने के लिए इतनी अवेयरनेस आज किसी के अंदर है नहीं। अगर सारा दिन हम लोगों की जिंदगी को देखते हैं तो वो सारा दिन अपने कार्य के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तन से भी दौड़ रहे हैं, मन से भी दौड़ रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, अपनी समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि तन से तो वो व्यस्त है पर मन से बड़ा त्रस्त है। आज अगर हम चाहते हैं कि व्यस्त होते हुए भी हम अपने तन और मन को स्वस्थ रखें, आज अगर हम चाहते हैं कि मैं दुनिया में जिस भी क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहा हूं उस हर कार्य में मुझे सफलता मिले, या मैं जिंदगी में अपने आप से खुश रह सकूं, मैं जब औरों के संपर्क में आता हूं तो मैं उनको खुशी दे सकूं, मैं अपने परिवार, अपने आप, या मैं जिनके भी साथ में रहूं उनके साथ मेरे संबंधों को मैं स्ट्रांग बना सकूं, अगर ये सब चीजों की मेरी चाहना है तो इन सब चीजों के लिए चाहिए आंतरिक ऊर्जा। तो जैसे नियमित व्यायाम की जरूरत है, ऐसे नियमित राजयोग मेडिटेशन की भी जरूरत है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी इस आंतरिक शक्ति को, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं और जिंदगी की भाग दौड़ के बीच होते हुए भी अपने मनोबल को हम स्थिर रख सकते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि राजयोग मेडिटेशन की जो आवश्यकता है उसको हम तीन एस्पेक्ट से नजर डालते हैं, कहां कहां और क्यों जरूरी है। तीन एस्पेक्ट्स में हम देखें, पहले फिजिकली दृष्टिकोण से और फिर साइकोलॉजिकली क्यों इसकी आवश्यकता है, और तीसरा है स्पिरिचुअली क्यों हमें स्ट्रांग होने की जरूरत है। जब पहला एस्पेक्ट हम अपने सामने रखते हैं, उस पर नजर डालते हैं, फिजिकली शारीरिक स्तर पर राजयोग की आवश्यकता क्यों है, हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे मन के विचारों का सीधा प्रभाव हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के ऊपर पड़ता है। जब हम एकाग्र चित्त होकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक विचारों के माध्यम से कोई कार्य करते हैं या ऐसे विचार मन में पैदा करते हैं, तो ये एक एक विचारों का प्रभाव हमारे शरीर के एक एक अंग के ऊपर पड़ता है। और जैसे जैसे विचारों का प्रभाव शरीर के इन इंद्रियों के ऊपर पड़ता है, इन अंगों के ऊपर पड़ता है, तो हमारे शरीर की कार्य प्रणाली भी सही ढंग से काम करती है, शरीर की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलने लगती है। तो ऐसा महसूस किया गया है, ऐसा देखा गया है कि राजयोग का प्रभाव सिर्फ किसी एक बीमारी पर नहीं, पर सारी ही हमारी शारीरिक बीमारियों पर इसका एक श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ने लगती है। मानसिक शक्ति जितनी तीव्र होगी उतनी हमारी ये रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ने लगती है, और इसीलिए फिजिकली दृष्टिकोण से ये राजयोग के अभ्यास की नियमित रूप से आवश्यकता है। अगर साइकोलॉजिकली हम देखें तो मनुष्य के जीवन में न जाने कितनी ही असामयिक घटनाएं घटती रहती हैं, और शायद उन घटनाओं के बारे में उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है। ये परिस्थिति मेरे सामने आनी है, ये घटना मेरे सामने घटनी है, उसको आभास भी नहीं होता है। लेकिन लगातार छोटी बड़ी जब बातें घटनाओं के रूप में इंसान के सामने आती हैं, तो उसका असर उसके मन पर, और उसके कारण कई छोटी छोटी बीमारियां मनुष्य के अंदर पैदा होने लगती हैं। डर, भय, चिंता, ऐसी छोटी छोटी बीमारियों का वो शिकार हो जाता है, और परिस्थिति से वो घबराने लगता है। परिस्थितियों से जूझने के बजाय उसको देख करके वो घबराने लगता है, अब मेरा क्या होगा, हर छोटी बात की वो चिंता करने लगता है, हर छोटी बात में उसके अंदर एक भय पैदा होता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे समय पर इन घटनाओं के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रखने के लिए और अपनी इस आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन की अत्यधिक आवश्यकता है। और तीसरे दृष्टिकोण से हम देखते हैं स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक स्तर की जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि आज हर व्यक्ति की खोज वो क्या है, हर व्यक्ति की डिमांड क्या है, हर व्यक्ति की पसंद क्या है। कोई व्यक्ति अगर लगातार दौड़ रहा है, कमाने के पीछे दौड़ रहा है, कुछ पाने के पीछे दौड़ रहा है, और जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है आप क्यों अपनी जिंदगी में इतना भाग रहे हो, आप आखिर क्या पाना चाहते हो, तो उसके अंदर के दिल की एक ही आवाज निकलती है, मैं शांति से जीना चाहता हूं, मैं इतना इसीलिए कमा रहा हूं ताकि आराम से बैठकर मैं शांति से अपना जीवन यापन कर सकूं, मैं अपनी जिंदगी शांति से गुजार सकूं, मैं शांति से सो सकूं। तो मन की चाहना क्या है, शांति से रह सकूं, आनंद से जी सकूं, प्यार से जी सकूं, चाहना कितनी सुंदर है। लेकिन इस चाहना को पूरी करने के लिए हम इस बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और जो मेरी चाहना है उसको मैं बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा हूं, बाह्य जगत में मैं उसको ढूंढ रहा हूं। तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि शांति के हीरे मोती तो मेरे पास ही छिपे हुए हैं, और उसकी खोज मैं बाह्य जगत में धन दौलत में पोस्ट पोजिशन में कर रहा हूं। ऐसे महसूस होता है कि शांति का खजाना तो मेरे पास है, तिजोरी तो मेरे पास है और चाबी मैं बाहर ढूंढ रहा हूं। कैसे संभव है? जो चीज मेरी अपनी प्रॉपर्टी, मेरी अपनी पूंजी है, वो मेरे अंदर ही झांकने से मुझे मिलेगी, वो बाहर लोगों के द्वारा मिलना मुश्किल है, वो बाहर की दुनिया से प्राप्त होना असंभव है। तो ये जो हमारी सुंदर कामना है शांति से रहने की, सुख का अनुभव करने की, प्यार से जीने की, आनंदित होकर जीने की, ये कामना हमारी वो कैसे पूरी होगी? जब राजयोग का अभ्यास हम करते हैं तो हम अपनी गहराई में जाकर के इन हीरे मोतियों को बहुत सरल तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए इसकी आवश्यकता है अपने अंदर जाने के लिए। दूसरी बात, क्यों हमको स्पिरिचुअली दृष्टिकोण से मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है कि हमारा आत्मा और शरीर का भी एक सुंदर रिश्ता है। हमको इस बात की समझ होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं और मैं इस शरीर के द्वारा कैसे कार्य कराती हूं, ये सारे शरीर का मैं किस तरह से संचालन करती हूं। क्योंकि बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता और बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। ठीक इसी तरह से जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं और बिना गाड़ी के ड्राइवर की कोई कीमत नहीं, पर दोनों चाहिए। ऐसी आत्मा को भी कर्म करने के लिए शरीर और इस शरीर को चलाने के लिए चैतन्य शक्ति आत्मा, तो इन दोनों की जो एक समझ है वो समझ भी हमको इस राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से मिलती है। तीसरा, आत्मा के साथ जो परमात्मा का एक पवित्र रिश्ता है, पवित्र संबंध है, उस पवित्र रिश्ते को भी इस अभ्यास के माध्यम से हम समझ पाते हैं और वो रिश्ता हम परमात्मा के साथ जोड़ पाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि राजयोग परमात्मा मिलन का एक सुंदर और सशक्त माध्यम है। जब राजयोग की बात हम करते हैं, आज दिन भर में अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी पदार्थ को देखते हैं, किसी वैभवों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो जितने पल हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उतने पल हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। योग का मतलब होता है जोड़, मिलन, संबंध। आज तक हम लोगों के साथ तो बहुत जुड़े, प्रकृति के साथ भी जुड़े, पदार्थों के साथ भी जुड़े, संबंधों के साथ भी जुड़े, लेकिन कभी हमने परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। और ये आत्मा का जो परमात्मा के साथ मिलन या आत्मा का परमात्मा के साथ जो संबंध स्थापन करने की कला है, उसी को कहा जाता है राजयोग। ये एक उच्च स्तर का मिलन है, एक सर्वश्रेष्ठ मिलन है। ये व्यक्ति नहीं, ये स्वयं ईश्वरीय शक्ति के साथ आत्मा का मिलन है। और इस मिलन से आत्मा को अपार सुख की अनुभूति होती है। इस मिलन से आत्मा को अपार शक्तियों की फीलिंग आती है। तो ये मिलन का नाम ही, ये संबंध का नाम ही, जिसको हम राजयोग कहते हैं। वास्तव में जब राजयोग का हम अभ्यास करते हैं तो शब्द आता है राज। ये राज शब्द से सिद्ध होता है, एक राजापन की फीलिंग। आपने देखा होगा कि कैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठकर सारी प्रजा को कंट्रोल करता है, सारे राज्य को नियंत्रित करता है, पर वो बैठता कहां है? अपने सिंहासन पर। और अपने सिंहासन पर बैठ करके सब कुछ वो प्रॉपरली कंट्रोल कर पाता है। ठीक इसी तरह से अगर ये समझ हमको आ जाती है कि मैं आत्मा भी जो चैतन्य शक्ति है, जो शरीर का संचालन कर रही है, मैं एक आत्मा जो इस प्रकृति सिंहासन पर बैठकर मेरे शरीर की सर्व कर्म इंद्रियों का मैं संचालन कर रही हूं, नियंत्रण कर रही हूं, लेकिन भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर के मस्तक के बीच विराजमान होकर एक एक इंद्रियों को मैं कंट्रोल कर पाती, अगर मैं इन इंद्रियों की गुलाम हो जाऊं तो मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, पर मैं अगर इन इंद्रियों की अधिकारी बन जाऊं, राजा बन जाऊं, तो मैं इन सब का प्रॉपर संचालन कर सकती। आज कुछ स्थिति संसार में हर व्यक्ति की इसी तरह की हो गई है कि किसी का भी अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, और कंट्रोल न होने के कारण जो हम नहीं चाहते हैं वो सब हमसे हो जाता है, और वो जब हमसे होता है तो फिर उसके रिजल्ट भी वैसी मिलती है, और जब रिजल्ट ठीक नहीं आती है तो फिर मन दुखी होता है, मन अशांत होता है, असंतुष्ट होता है। मैं कई बार इस बात को कहती हूं, क्या करूं, मैं ये बात सुनना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे कानों ने ये बातें सुन ली, और जो हम सुनते हैं वो धीरे धीरे हमारे अंदर समाने लगता है। कई बार ऐसे भी कहते हैं, क्या करूं, मैं देखना तो नहीं चाहती थी, पर मेरी बार बार दृष्टि वहां चली जाती है, मतलब आंख रूपी इंद्री पर भी मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं बोलना तो नहीं चाहती हूं, पर क्या करूं, परिस्थिति ऐसी है, मुख से निकल जाता है, अर्थात मुख रूपी इंद्री पर भी मेरा कंट्रोल नहीं है। कारण कि आज आत्मा राजा बनकर के इन इंद्रियों को नहीं चला रही है, पर इंद्रियां खुद अपने राजा को गुलाम करके बैठी है। और जब हम राजयोग का नियमित अभ्यास करते हैं और बार बार इस चीज को महसूस करते हैं, चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं, राजा हूं, तो ऑटोमेटिक मेरे देखने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, कर्म करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है, और जैसा मैं चाहूं वैसा मैं अपने आप से करा सकूं, इतनी ताकत आत्मा के अंदर आ जाती है। इसीलिए स्वशासन की कला ये राजयोग के माध्यम से हम सीख पाते हैं। जब योग की बात आती है, ईश्वर को याद करने की बात आती है, परमात्मा को याद करने की बात आती है, मेडिटेशन करने की बात आती है, तो प्रायः सभी लोगों की एक कॉमन शिकायत होती है, और वो शिकायत ये होती है कि मन एकाग्र नहीं होता है, ये मन बार बार भटक जाता है, ये मन परमात्मा में टिकता नहीं है। एक कॉमन शिकायत, मेडिटेशन होता नहीं है, योग लगता नहीं है, बुद्धि भटक जाती है। वास्तव में राजयोग मेडिटेशन में मन और बुद्धि ये दो शक्तियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि राजयोग एक सुखद यात्रा है। राजयोग एक अंतर जगत की यात्रा है और इस यात्रा को करने के लिए हमें अपने मन और बुद्धि इन दोनों शक्तियों को अपना सहयोगी बनाना होगा, उनको साथ लेकर के चलना होगा। अगर ये दोनों ही शक्तियां मेरे कंट्रोल में नहीं तो मैं राजयोग का अभ्यास भी नहीं कर पाती। जब मन टिकता नहीं, एकाग्र होता नहीं, तो लोग समझते हैं कि शायद एकाग्रता के लिए मुझे अपने मन को शून्य करना पड़ेगा, क्या मन को, विचारों को मैं जीरो कर दूं तब मेरे मन की एकाग्रता होगी। या कई लोग सोचते हैं कि मैं अपने मन को कोई एक मंत्र में बांध दूं और उस मंत्र को मैं बार बार जपती रहूं तो शायद मेरी एकाग्रता बढ़ जाएगी। कई फिर ऐसे भी सोचते हैं कि मैं अपनी श्वास की गति पर सिर्फ ध्यान देती रहूं तो उससे मेरी एकाग्रता बढ़ जाएगी। इन तीनों बातों पर आज हम गौर करते हैं। जो ये समझते हैं कि मन को हम शून्य कर दें, मन का हम दमन कर दें, मन में कोई विचार उठे ही नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि मन तो विचारों की फैक्ट्री है, मन तो विचारों की खदान है और इसमें लगातार कोई ना कोई विचार उठ नहीं है। जैसे हम समुद्र के सामने जाएं और समुद्र के सामने बैठ करके सोचे कि इसमें कोई लहरें ना उठे, ये तो संभव नहीं है। एक समुद्र को देखो, उसमें छोटी बड़ी कितनी ही प्रकार की लहरें उठती हैं, लेकिन उन लहरों का हम मजा लेते हैं और हमें पता है ये लहरों से मुक्त सागर हो नहीं सकता। ऐसे इस मन के समंदर में भी विचारों की लहरों को उठना ही है। अब वो चाहे विचार अच्छे हो, बुरे हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, व्यक्ति के प्रति हो, स्व के प्रति हो, प्रकृति के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, लेकिन कोई ना कोई विचार वो मन में लगातार उठने ही है। इन विचारों को हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जो मन में विचारों की लहर उठ रही है उसकी गति को हम कम करके उसको एक सही मार्ग दे सकते हैं, एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं, पर विचारों को हम शून्य नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो ये समझते हैं कि शायद हम अपने मन को एक अच्छा सा मंत्र दे दें और उस मंत्र का हम बार बार रिपीटेशन करते रहें, जाप करते रहें, तो हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन हमें इस बात की भी जानकारी जरूरी होना चाहिए कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को चलाने के लिए रोज हमको भोजन करना होता है। पौष्टिक भोजन भी आप रोज रोज एक ही प्रकार का स्तन को देते रहो तो एक दिन वो भोजन भी पसंद नहीं आएगा। तो तन के लिए भी हमको रोज वैरायटी खाना चाहिए, ऐसे मन को भी तो, क्योंकि विचार मन का भोजन है। अब मन को भी तो स्वस्थ रखने के लिए मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के विचार देने पड़ेंगे। सिर्फ एक ही मंत्र में मैं उसको बांध दूं तो मन भी बोर हो जाएगा और फिर वो भटकना शुरू कर देगा, वो एकाग्र नहीं हो सकेगा, वो मेरा सहयोगी नहीं बन सकेगा। इसीलिए एक मंत्र नहीं लेकिन सुंदर सुंदर विचार हम अपने अंदर क्रिएट करें, शुभ भावनाओं के शक्तिशाली विचार मन में क्रिएट करें जो मेरी सफलता में साधक बन जाएं। ऐसे विचार मैं क्रिएट करूं, जो सीन जो दृश्य में देखूं उन दृश्य को देखते हुए भी मैं अच्छे विचार मन में क्रिएट करूं। तो ये विचार, ये मन का जो भोजन, जब हम योग में बैठे तो किसी एक मंत्र में नहीं लेकिन बहुत सुंदर विचारों में अपने मन को रंग दे। धीरे धीरे मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और तीसरे प्रकार के जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी श्वास की गति पर लगातार ध्यान देते रहें, वास्तव में पहले भी हमने बताया कि शरीर का प्रभाव मन पर नहीं पर मन के विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगर मन के विचारों की गति फास्ट होगी तो उसका असर हमारी श्वास की गति पर भी पड़ेगा। अगर मन के विचारों की गति सामान्य होगी, नॉर्मल होगी, तो उसका असर श्वास की गति पर भी पड़ेगा। अब देखना यह है कि मेरे विचार किस क्वालिटी के हैं। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन में विचारों को रोकना नहीं है, परंतु जब दुनिया भर के विचार मन में आ रहे हैं तो कुछ पल के लिए साक्षी होकर के इन मन के विचारों को हम देखें, कहां कहां से विचार आ रहे हैं, किन किन बातों के विचार मेरे मन में आ रहे हैं, क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। जब थोड़े समय तक साक्षी होकर के उन विचारों को हम देखते हैं एकाग्र होकर, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उन विचारों की गति पर असर पड़ता है, कम हो जाते हैं। और विचारों की गति जब कम हो जाती है तो हम उसको एक सकारात्मक दिशा में चैनलाइज कर पाते हैं, एक सही मार्गदर्शन दे पाते हैं। तो ऐसे ही राजयोग एक हमारी बुद्धि योग की यात्रा भी है। जैसे दो तारों को हम जोड़ते हैं, कनेक्शन होता है, दो तारों को जोड़ने से कनेक्शन होता है तो करंट मिलती है। यहां भी जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमको भी यहां तार को जोड़ना है, ब्लैंक नहीं बैठना है परंतु अपने मन और बुद्धि की तार को जोड़ना है। पर किसके साथ जोड़ना है? मुझे परमात्मा के साथ इस तार को जोड़ना है। क्योंकि जनरली हम ये कहते हैं कि मैं भगवान को याद तो करता हूं लेकिन मुझे वो अनुभव नहीं होता है, वो शक्ति का आभास नहीं होता है। उसका कारण कि हम अपने मन की तार को, बुद्धि की तार को सही ढंग से जोड़ते नहीं है। आज सिर्फ ऐसे ही हम टीवी के सामने जाकर बैठ जाएं और बार बार सोचते रहें, इस टीवी में कुछ दिखता तो नहीं है, इस टीवी में कुछ सुनाई तो देता नहीं है। क्या संभव है? जब तक आप तार जोड़ोगे नहीं, स्विच ऑन करोगे नहीं, तब तक ना कुछ दिखाई देगा ना कुछ सुनाई देगा। ठीक इसी तरह से मैं भी ब्लैंक होकर के ऐसे ही भगवान के सामने जाके बैठ जाऊं और सोचूं कि मुझे वो पावर्स मिले, कैसे संभव है? चेक करो, मेरा कनेक्शन लूज तो नहीं है, मेरा कनेक्शन प्रॉपर है, मैंने कोई एक लक्ष्य अपनी बुद्धि को दिया है, मैंने अपनी बुद्धि के स्विच को ऑन किया है, और उस लक्ष्य को लेकर के आप बैठो, बुद्धि की तार जोड़ो। ये हो ही नहीं सकता है कि वो शक्ति का अनुभव आपको ना हो। भक्ति मार्ग में हम कई बार देखते थे कि भक्त बहुत प्यार से जब भगवान के आगे हाथ में माला लेकर के सिमरन करते थे, हाथ में माला तो होती थी लेकिन फिर भी मन टिकता नहीं था, भटकता था। इसीलिए तो एक सुंदर सी कहावत बनी कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा चहु और फिरे, ये तो सिमरन नहीं। कि हाथ में मैंने माला तो ली और मुख से मैंने ईश्वर के नाम का जाप किया, पर मन तो मेरा चारों तरफ भटक रहा है, इसको कोई सिमरन तो नहीं कहेंगे। इसीलिए राजयोग मेडिटेशन में कोई शारीरिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। यह सबसे सुंदर विधि है, शांति से बैठें और अपने मन और बुद्धि को, जो सूक्ष्म हमारी शक्ति है, उस तार को परमात्मा के साथ जोड़ करके देखें। निरंतर उसके प्यार का प्रवाह हमारे अंदर होने लगेगा, उसके स्नेह का प्रवाह हमारे अंदर होने लगेगा। ऐसे राजयोग मेडिटेशन हमें कर्म योग की यात्रा भी सिखाता है, क्योंकि कई बार हमारे मन में ऐसी भ्रांति होती है कि मेडिटेशन करने के लिए, योग करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, या सिर्फ एक स्थान पर ही बैठ करके, आसन लगाकर बैठ करके ध्यान करेंगे तब ध्यान लगेगा। एक स्थान पर बैठ करके ध्यान तो जरूर हमें करना ही है, लेकिन राजयोग एक बड़ी सहज विधि है, बड़ी सुंदर विधि है, कि हम कर्म करते करते भी, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते करते भी हम ईश्वर को याद कर सकते हैं, परमात्मा को याद कर सकते हैं। क्योंकि कर्म हम हाथों से कर रहे हैं, उस समय मैं अपनी बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ दूं तो कर्म और योग का जो बैलेंस होगा, वो कर्म और योग का बैलेंस मेरे कर्मों में कुशलता भर देगा, वो कर्म और योग का बैलेंस मुझे कर्म में सफलता हासिल करा देगा। और इसीलिए जितना जितना हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं, कर्म और योग का संतुलन रख करके कार्य करते हैं, वैसे कई प्रकार की आंतरिक शक्तियां भी हमारी जागृत होने लगती हैं, विकसित होने लगती हैं। क्योंकि जब हम कार्य व्यवहार में लोगों के संपर्क में आते हैं तो वहां बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं, कहीं सहन भी करना पड़ता है, कहीं किसी की बात को समाना भी पड़ता है, कहीं बातों को परखना भी पड़ता है, चीजों को परखना भी पड़ता है, जिंदगी के प्रत्येक कदम पर कहीं कहीं निर्णय भी लेने पड़ते हैं, कहीं बिखरी हुई बातों को समेटना भी पड़ता है। तो बहुत सारी बातों को जब हम सामने देखते हैं तो राजयोग के अभ्यास से वो सहन शक्ति हमारे अंदर आने लगती है, हर बात को समाने की शक्ति हमारे अंदर आने लगती, हर चीज को परखने की ताकत बढ़ जाती है। जीवन के कदम कदम पर जो निर्णय लेने पड़ते हैं, वो निर्णय लेने का सही तरीका सीख जाते हैं। निर्णय सही तो फिर कार्य भी सही होता है, प्राप्ति भी ठीक होती है, फिर धोखा नहीं खाना पड़ता है। तो इसीलिए कर्म क्षेत्र पर इन शक्तियों की हर व्यक्ति को आवश्यकता है। तो राजयोग के अभ्यास से कर्म करते करते कर्म में कुशलता भी आती है और ये शक्तियां भी हमारी जागृत होती है, जो समय प्रति समय हमें मदद करती है। आज हम देखेंगे राजयोग का सफल प्रयोग हम अपने जीवन में तीन स्तर पर करके देखें। योग लगाना भी जरूरी है, लेकिन उसका प्रयोग हम अपने पर्सनल लेवल पर करके देखें। तीन स्तर पर हम देखेंगे। पहला कि जब हम अपने आप को देखते हैं, हर व्यक्ति के अपने एक स्वभाव है, हर व्यक्ति के अपने एक संस्कार है, और वो स्वभाव संस्कारों के वशीभूत होकर के ही वो कर्म करता है। अब जब मैं अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर के इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हूं, मुझे पता भी है कि मेरा संस्कार ठीक नहीं है, मेरा ये स्वभाव ठीक नहीं है, और लोग भी कई बार मुझे कहते हैं आपकी ये बात ठीक नहीं है, पर उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या उसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। हाँ, शरीर में कोई कमी है तो उस कमी को ठीक करने के लिए तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े छोटे बड़े आईने हैं घर में। घर से बाहर निकलना होता है, कहीं जाना होता है, तो तुरंत हम आईने के सामने खड़े होकर के अपने चेहरे को देख लेते हैं। मेरे चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है, मैं बाहर जाने के लायक हूं, मैं लोगों से मिलने के लायक हूं। तो आईने में अपने आप को देखना बड़ा सहज है, उसमें देख करके अपने चेहरे को ठीक कर लेंगे, अपने बालों को ठीक कर लेंगे, अपने वस्त्र को ठीक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन मेरे जो ये स्वभाव संस्कार है, इसको मैं कौन से दर्पण में देखूं, इसको मैं कैसे ठीक करूं, उसके लिए शायद मेरे पास कोई दर्पण नहीं है। आध्यात्म का दर्पण एक सबसे बड़ा दर्पण है, नॉलेज का दर्पण एक सबसे सुंदर दर्पण है, कि जहां मैं अपनी कमी वेशियों को देखकर, सिर्फ देख लेना ही काफी नहीं है, पर देखने के बाद अगर मुझे पता चलता है कि यहां मेरी एक कमी है, उस कमी को मैं एक्सेप्ट करूं, रियलाइज करूं और उसको मैं चेंज करूं, इसका मतलब मैं राजयोग का एक सफल प्रयोग अपने जीवन में कर रही हूं। मात्र योग नहीं, लेकिन मेरे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और वो परिवर्तन आ रहा है, मतलब मेरा प्रयोग सही दिशा में चल रहा है। ऐसे दूसरे स्तर पर हम देखें कि जब हम औरों के संपर्क में आते हैं, औरों के साथ मिलकर के हम कार्य करते हैं, तो जब हम जब औरों को देखते हैं तो ज्यादातर हमारी दृष्टि लोगों की कमियों पर जाती है, अच्छाई पर नहीं पर बुराई पर जाती है, गुणों पर नहीं अवगुणों पर जाती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर 50 गुण है और एक अवगुण है, हमारी इतनी तीव्र पारखी दृष्टि होती है कि हम उस 50 गुण को भी छोड़ करके उसके एक अवगुण को पकड़ लेते हैं, और जिस चीज को मैं सारा दिन देख रही हूं, वर्णन कर रही हूं, नेचुरली वो चीज मेरे अंदर भी आती जाएगी, वो इफेक्ट मेरे ऊपर भी पड़ेगी। तो मैं लोगों के साथ जब व्यवहार में आती तो मैं उनको किस तरह से देखूं, आज मुझे उस दृष्टिकोण को भी चेंज करना है कि चाहे वो कैसे भी है, कोई भी है, लेकिन मेरा उन सब के प्रति एक आत्मिक भाव नहीं, ये भी ईश्वर की संतान है, ये भी मेरे आत्मिक भाई आत्मिक बहने हैं। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई दोष है, मुझे उस दोष को नहीं, मुझे उसकी अच्छाई को ग्रहण करना है। हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलतियां होती है, मुझे उसकी गलती को माफ कर देना है, मुझे उसकी गलती को पकड़ के नहीं रखना है, मुझे उससे नफरत नहीं करना है, पर मुझे उसकी गलती को माफ कर देना है, क्षमा कर देना है। और जब इस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार में आते हुए उनकी छोटी बड़ी जो बातें हैं, जो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बाधक है, उनको मैं लेट गो करती जाऊं, छोड़ती जाऊं, अगर दिन भर हमारा ये प्रयोग चालू रहेगा तो राजयोग का सफलतम प्रयास हम अपने लिए कर सकेंगे। तीसरी बात, दिन भर में कई प्राकृतिक बातें भी हमारे सामने आती हैं। जैसे पहले भी कहा था, बहुत सारी घटनाएं जीवन में घटती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन राजयोग हमें सिखाता है परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं, मेरे कंट्रोल में मेरी मन स्थिति है। परिस्थिति पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, और जब उन परिस्थितियों को हम देखते हैं तब उस समय अंदर से चेक करें कि इस समय मेरे अंदर कैसे थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं, इन परिस्थितियों के सामने मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरी भावनाएं कैसी हैं, उनको मैं चेक करूं। और जब मैं इस चीज को अच्छी तरह से चेक कर पाती हूं और इस नॉलेज को समझ पाती हूं कि परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं हैं, बस उसको मुझे नियंत्रण में रखना है, उसको छोड़ करके मुझे कोई कार्य नहीं करना है। तो स्व के प्रति, औरों के साथ संपर्क में आते, प्राकृतिक परिस्थितियां घटनाओं को देखते हुए, ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे एक कल्याणकारी भाव मन में रखना है कि जो घटना मेरे सामने घट रही है वो मुझे कुछ पाठ पढ़ा रही है, वो मुझे कुछ शिक्षा दे रही है, ये कल्याणकारी है, ये सुंदर भाव उन घटनाओं के प्रभाव में मुझे आने नहीं देंगे, पर उस प्रभाव से मुझे न्यारा कर देंगे, मुक्त कर देंगे। और इसलिए ये राजयोग एक बहुत उच्चतम क्वालिटी का, उच्च स्तर का योग है, क्योंकि जब परमात्मा को हम याद करने के लिए बैठते हैं तो हमें अपनी देह के संबंध, इन सब बातों से परे होते होते अपने एक सुंदर आत्मस्वरूप में टिकना होता है। परमात्मा मिलन के लिए हम तीन बातों पर और ध्यान देंगे कि राजयोग का अगर हम नियमित अभ्यास करना चाहते हैं तो पहले मुझे इस बात की जानकारी हो कि मुझे किसको याद करना है, मेरा कनेक्शन किसके साथ है, मैं कौन, परमात्मा कौन, उस नॉलेज को साथ में रख करके चलें। जहां इस बात की नॉलेज होगी वहां ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करना आसान होगा, मैं साधक हूं और वो साध्य है, और मन बुद्धि के साधन से मुझे उस साध्य के साथ मिलन मनाना है। तो ये नॉलेज चाहिए, नॉलेज हो तो कनेक्शन हो सकेगा, और जब कनेक्शन हो गया तो फिर उस परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन करना भी सहज होगा। कम्युनिकेट करने के लिए भी संबंध की नॉलेज चाहिए। जनरली आज बड़ी आसानी से हम ये गीत की लाइनें भगवान के आगे गा लेते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब बात कहने में तो बड़ी आसान लगती है, हे भगवान आप मेरे माता पिता हो, आप मेरे सब कुछ हो, पर अपने दिल पर हम हाथ रख करके पूछें कि जो मैंने कहा क्या वैसा मैंने ईश्वर को अपना माना, वैसा संबंध जोड़ा? क्योंकि जब तक संबंध जुटेगा नहीं तब तक कम्युनिकेशन हो नहीं सकेगा। कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना अर्थात आत्मा की परमात्मा के साथ रूह रिहान, बातचीत होना। इसीलिए राजयोग ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, राजयोग मेडिटेशन ये टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें हमें सिर्फ अपनी ही बात ईश्वर को कहते रहना हो ऐसा नहीं, लेकिन हम अगर कुछ कहते हैं तो हमें उसकी अंतर आवाज को भी सुनने की आवश्यकता है। ये टू वे कम्युनिकेशन है। और सांसद इस बात का भी ध्यान रखें कि जब हम कम्युनिकेट करने के लिए बैठते हैं अर्थात परमात्मा स्मृति के लिए बैठते हैं तो हमें परमात्मा से कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है, किसी की भी कंप्लेन नहीं करनी है। लेकिन अपने आप को ये समझ करके बैठना है कि मैं तो एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और सब कुछ इस समय पर मैं भूला हुआ हूं, मेरा सिर्फ एक के साथ ही मिलन हो रहा है। तो मुझे किसी की कंप्लेन नहीं करना है। अगर हम कंप्लेन लेकर के बैठेंगे तो भगवान याद नहीं आएगा, लेकिन जिसकी हम कंप्लेन कर रहे हैं वो व्यक्ति का चेहरा बार बार हमारे सामने आएगा। दूसरी बात, जब ईश्वर को याद करने के लिए बैठे तो भगवान से कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ ये भी नहीं कहना है आप मुझे दे दो दे दो दे दो। परमात्मा तो दाता है, परमात्मा तो गुणों का भंडारी है, परमात्मा तो गुणों का सागर है, इसीलिए तो उसकी महिमा में हम गाते हैं, प्यार का सागर, शांति का सागर, दया का सागर। सागर से कुछ मांगने की जरूरत है? आप आज सागर के किनारे जाकर बैठो, सागर की गहराई को देखकर, सागर में उठती हुई लहरों को देखकर, सागर की विशालता को देखकर, क्या कभी हम सागर से मांगते हैं ऐसी विशालता हमको दे दो, ऐसी गहराई हमको दे दो? मांगते नहीं, पर उस सुंदरता को देख करके प्रफुल्लित होते हैं और ऑटोमेटिक वो चीज हमारे अंदर आने लगती है। ठीक इसी तरह से परमात्मा से गुण और शक्तियों को भी हम मांगे नहीं, क्योंकि परमात्मा अगर गुणों का सागर है तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि मैं आत्मा भी उस गुण का स्वरूप हूं। अगर वो शांति का सागर है तो मैं जब मेडिटेशन में बैठूं तो मैं ये विचार मन में क्रिएट करूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और इस सुंदर अनुभव के साथ बैठते हैं तो जैसे शांति की किरणें निरंतर आत्मा के ऊपर प्रवाहित होने लगती है और हमारे द्वारा फिर चारों तरफ के वातावरण में वो वाइब्रेशंस भी फैलने लगते हैं। मांगना नहीं है, वैसे स्वरूप बनकर बैठ जाना है। तो इस तरह से हम परमात्मा के साथ जब कम्युनिकेट करें तो बड़े निस्वार्थ भाव से, इनोसेंट भाव से, सहज भाव से, एक छोटे बच्चे की तरह हम उसके सामने बैठ करके अपने दिल की बातें भगवान के साथ करें। कोई कठिन नहीं है, जैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बस ये ईश्वर के साथ अपने दिल की मुलाकात है और इससे दिल को आराम मिलता है, दिल को सुकून मिल जाता है। और जब ऐसी स्थिति में हम उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो तीसरी बात, कनेक्शन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन और फिर कलेक्शन। क्या कलेक्ट करना है कि जो परमात्मा की अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों को अपने अंदर भरता जाओ, जो उसके अपार गुण है उसको अंदर भरता जाओ, फिर आप देखना कि मन कितना शक्तिशाली हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि राजयोग मेडिटेशन में हमारे दिन भर की जो दिनचर्या है, विचार व्यवहार, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर मेरी नेचर बात बात में नाराज होने की है और उसी नाराजगी के साथ मैं भगवान के साथ मिलने के लिए बैठूं, मेरा योग कैसे लगेगा? अगर मेरी नेचर बात बात में गुस्सा करने की है, चिड़चिड़ेपन की है और उस स्थिति में बैठ करके मैं परमात्मा को याद करूं, मेरा योग कैसे लगेगा? अगर मेरी नेचर असंतुष्ट रहने की है तो मैं तो परमात्मा के सामने कितने भी अच्छे से बैठूं लेकिन कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकूंगा। तो मेरे सारे दिन के जो विचार हैं, व्यवहार हैं, उन सब का असर मेरे राज्यों के अभ्यास पर पड़ता है। इसीलिए दिन भर की दिनचर्या पर हमें अटेंशन देने की जरूरत है। कहां किस प्रकार के विचार, कहां किस तरह का व्यवहार मुझे करना है, संघ पर भी ध्यान देना है, अन्न पर भी ध्यान देना है, ये छोटे छोटे जो फैक्टर हैं वो सब मुझे मेडिटेशन में हेल्प करते हैं। अगर अन्न शुद्ध है, अगर संग अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो वो भी मुझे मेडिटेशन में मदद करता है। तो हम दिन भर की दिनचर्या पर अटेंशन रखें और जब हम राज्यों का अभ्यास करने के लिए बैठें, तो एक इस सुंदर विचारधारा के साथ कि आज मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए जाता है, प्रेसिडेंट को मिलने के लिए जाता है, कोई हाईएस्ट अथॉरिटी को मिलने जाता है, तो अभी तो मिलने गया नहीं लेकिन ये सोच ही उसको कितनी खुशी देता है, मैं इनको मिलने जा रहा हूं, वो सोच कितनी खुशी देता है। और उसके बाद जब उनसे मिलन होता है तो उस मिलन के बाद वो खुशी कितनी गुनी बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से मैं संसार की हाईएस्ट अथॉरिटी से मिलने जा रहा हूं, सुप्रीम सोल से, सुपर पावर से मिलने जा रहा हूं। तो ऐसे खुशी खुशी के विचारों के साथ हम परमात्मा के साथ बैठें, उसको याद करें और उसकी दिव्य अनुभूतियों को अपने अंदर महसूस करते रहें। बस इसी का नाम है राजयोग। हम चाहते हैं कि सुंदरतम अभ्यास नियमित रूप से हम करें। जैसे हमारी दैनिक दिनचर्या में कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, जरूरी है ऐसी अपनी दिनचर्या में इस मेडिटेशन के अभ्यास को भी हमें इंक्लूड करना है। ये भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, लेकिन ये अभ्यास बहुत जरूरी है। और कैसे हमें अपने मन को सकारात्मक विचार देना है, तो हम उस विचारों की सुंदर यात्रा करें उसके पहले ईश्वर की याद का, क्योंकि ईश्वर दाता है, हमें सद्बुद्धि देने वाला है, श्रेष्ठ मार्ग का दर्शन करने वाला है, ऐसे मन को शक्ति देने वाले परमात्मा के प्रति एक बहुत सुंदर सा गीत लेकर हमारे बीच आ रही है एक प्लेबैक सिंगर स्नेहा शंकर, जिन्होंने एशिया सिंगिंग सुपरस्टार रियलिटी शो में विनर रही है, और एक सुंदर सा गीत, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इस गीत की प्रस्तुति हम उनके द्वारा सुनेंगे, उनके सुंदर स्वरों को सुनेंगे और उसको साथ साथ फील भी करते जाएंगे। स्नेहा, जिसकी उम्र तो कम है लेकिन उसकी आवाज में बड़ा दम है, तो जब उनके मुख से स्वर लहरी को सुनेंगे, हम ईश्वर की याद में खो जाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, और उस गीत के पश्चात फिर हम 5 मिनट के लिए वो अंतर जगत की यात्रा करेंगे।
इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर पावन हर एक मन का कोना, कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना।
स्नेहा बहन से बहुत सुंदर गीत हम सभी ने सुना, और वो गीत सुनते सुनते मैं समझती हूं सभी की तार परमात्मा से जुड़ गई होगी। अब क्यों ना 5 मिनट के लिए एक अंतर जगत की यात्रा का भी हम यहां ही प्रयोग करें और देखें कि राजयोग के माध्यम से कैसे हमारी वो शक्तियां विकसित होती हैं, कैसे हमारी शांति में वृद्धि होती है। तो चलो कुछ पल के लिए इस भौतिक जगत से, सांसारिक बातों से मुक्त होकर अपने आप को शांति की गहराई में ले चले, शांति की तराइयों में ले चले, अपने आप को परखें, अपने अंदर छिपे हुए हीरे मोतियों को प्राप्त करें। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को महसूस करें कि जैसे ये 5 तत्वों में विलीन होता जा रहा है, और मेरे मस्तक पर एक दिव्य सितारा चमक रहा है। वो दिव्य सितारा कोई और नहीं, मैं स्वयं एक चैतन्य शक्ति हूं, चेतना हूं। इस दिव्य सितारे के अंदर अपरम अपार शांति की शक्ति समाई हुई है। मैं एक निर्मल बिंदु हूं, दिव्य चेतना हूं, पूरी जागृति के साथ मैं अपने स्वरूप पर एकाग्र हो चुके हूं। मेरे अंदर से शांति की पवित्र किरणें प्रवाहित हो रही है। और इस शांति की किरणें मेरे शरीर के एक एक अंग के ऊपर पड़ती जा रही है। मेरी सर्व कर्म इंद्रियां भी पूरी तरह से शांत, शीतल और रिलैक्स हो गई है। अब मेरे मस्तक से निकलते हुए इस शांति के प्रकंपन आसपास के वातावरण में फैलते जा रहे हैं। जैसे जैसे शांति के प्रकंपन इस वातावरण में फैल रहे हैं, संपूर्ण वातावरण भी शांत हो चुका है। मैं अपने अंदर के सूक्ष्म आवाज को भी सुन पा रही हूं। चारों तरफ गहरी शांति है। ये शांति मुझ आत्मा का असली स्वरूप है, असली स्वधर्म है। ये मेरे दिल की चाहना है। संपूर्ण रूप से शांति की सुखद अनुभूतियों में मैं डूब चुकी हूं। एकदम लाइट फील कर रही हूं, हल्कापन महसूस कर रही हूं। इस वास्तविकता को आज मैं एहसास कर पा रही हूं। अब इस कर्म क्षेत्र पर जो भी कर्म करूंगी शांति की अनुभूति के साथ करूंगी। सबके साथ शांति से व्यवहार करूंगी। श्रेष्ठ विचार मन में पैदा करूंगी। और अपनी इस स्थिति को सदा सदा कायम रखूंगी। ओम शांति शांति शांति।
ईश्वर को पाना दिल की तमन्ना थी, ईश्वर की खोज कई जन्मों से की थी। चमकने लगा तब भाग्य का सितारा, जब आत्मा को परमात्मा की पहचान मिली थी। इन तीन दिनों की यादों का सफर था बड़ा सुहाना। पग पग पर आएंगी चुनौतियां, पर कभी नहीं घबराना। संजो कर रखना अपने दिल में, जो मिला है अनमोल खजाना। फिर सीख जाओगे आप भी मुश्किलों में मुस्कुराना। इस सफर में आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे भी ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं का लाभ लेने के लिए वर्तमान समय आप prabhuupuwan.org/meditate-online इस वेबलिंक के साथ जुड़े रहें। लॉकडाउन के पश्चात आप नजदीकी ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर की विजिट अवश्य ही कर सकते हैं। ओम शांति।